अभिमन्यु और इशिका साथ में रेस्टोरेंट में आए हुए थे। उसी जगह पर आयशा भी मौजूद थी। आयशा इशिका को एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई देने जा रही थी जिसे लेने के बाद वो राधिका की तरह धीरे धीरे बीमार होने लगती। आयशा पानी के ग्लास में वो दवाई मिलाकर इशिका के पास पहुंच ही रही थी कि पार्थ बीच में आ गया। पार्थ ने आयशा को पहचान लिया था। वो जानबूझकर आयशा से जाकर टकराया, जिससे उसके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। जहां आयशा पार्थ के साथ मिलकर सेटलमेंट करने की सोच रही थी, तो वहीं पार्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई उसके बीच में आकर टांग अड़ाए। वो मन ही मन आयशा को भी अपने रास्ते से दूर रहने को बोल रहा था। आयशा ग्लास उठाकर वहां से चली गई, तो वहीं पार्थ इशिका और अभिमन्यु के पास उनके टेबल पर बैठ गया। उसकी इस तरह अचानक उनके बीच में आने पर अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई राजवंश एम्पायर नहीं है जहां तुम शेयर्स का नाम लेकर हमारे बीच में घुसने की कोशिश करोगे। जानता हूं ये राजवंश एम्पायर नहीं है, पर क्या तुम दोनों जानना नहीं चाहोगे आखिर मैंने तुम लोगों का साथ क्यों दिया? पार्थ ने भौहें उठाकर पूछा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अभिमन्यु और इशिका एक साथ बोले। उन दोनों के एक साथ बोलने पर पार्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तुम दोनों के तो ख्यालात भी मिलते हैं। ठीक है, तुम दोनों इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और पार्थ की तरफ बोरियत भरे लहजे से देखते हुए कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो, तुम हमारी डेट खराब कर रहे हो। आया तो बहुत कुछ खराब करने हो, सोचा शुरुआत डेट से ही करते हैं, पार्थ ने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा। जोक सपाट, मैंने तुम दोनों का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग हो अभिमन्यु। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे बस डॉक्टर अनामिका इशिका की हेल्प चाहिए ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है, फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऐसे तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हो और अब दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का सोच रहे हो, इशिका ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, हम उसमें थोड़ा बदलाव जर सकते हैं, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, पर प्लीज अब मना मत करना। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी रिसर्च में तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिसर्चर्स की कमी है या मैं पैसे देकर अच्छे रिसर्चर हायर नहीं कर सकता, लेकिन सब अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर अनामिका अगर किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है तो वो सक्सेसफुल होता ही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। पार्थ ने इशिका को मनाने की कोशिश की। उसकी बातों से उन दोनों को यही जाहिर हो रहा था कि पार्थ सच बोल रहा है। पहले भी जब इशिका ने उसे अभिमन्यु की सर्जरी के लिए मनाया था, तब भी पार्थ ने यही शर्त रखी थी। प्रोजेक्ट देखने के बाद इशिका मना करने के बाद यहाँ आ गई, तो पार्थ यहाँ भी उसके पीछे चला आया था। इशिका चुपचाप बैठी थी, उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया था, तो पार्थ ने एक बार फिर उसे मनाने के लिए कहा, आई प्रॉमिस तुम्हें एक अच्छी टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तुम प्रेग्नेंट हो तो घर पर काम कर सकती हो। तुम्हें रिसर्च के लिए जो भी बुक्स या कोई भी सोर्स चाहिए होगा वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मना मत करना। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अकेला छोड़ दो, इशिका ने जवाब दिया। इस वक्त उन्हें पार्थ के इरादे बुरे नहीं लग रहे थे। पार्थ अपनी रिसर्च को लेकर कितना ऑब्सेस था ये उन्हें पहले ही उस हॉस्पिटल में पता चल चुका था। पार्थ ने उसकी बात पर हामी भरी। वो उठने को हुआ तभी अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, अगर बात सिर्फ रिसर्च इतनी ही थी तो शेयर मांगने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रशांत राजवंश के बेटे हो? हॉस्पिटल में भी तुम बता सकते थे कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। बता सकता था, लेकिन मुझे मेरा हक भी चाहिए था, तो तुम्हारे पीछे आ गया। बाकी मैं तुम्हारा फेवर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं वो सब भूल जाऊंगा जो मेरी मॉम के साथ हुआ था। ऐसा समझ लो अभिमन्यु राजवंश, तुम डॉक्टर अनामिका की वजह से बच गए, पार्थ ने सख्त लहजे में कहा और फिर वहां से चला गया। पार्थ के जाते ही अभिमन्यु ने इशिका से कहा, क्या सच में तुम उसका प्रोजेक्ट करने वाली हो? मुझे अभी भी उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और इरादे भी नीक लग रहे हैं। वो एक सर्जन है और सर्जरी के बाद काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है जब पेन अनबेरेबल हो जाता है और कुछ पेशेंट की जान चली जाती है। ऐसे में इस तरह की दवाइयां बनाना हर कोई सोचेगा, पर उसने जो भी फॉर्मूला बनाया था और उसकी रिसर्च भी, वो गलत दिशा में जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में उसकी हेल्प करने में कोई बुराई है, इशिका ने अपना पक्ष रखा। पार्थ जब यहां आया था तब भले ही बड़ा तूफान लेकर आया हो, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि अस्पताल में सब उसकी तारीफ करते थे। वो एक अच्छा डॉक्टर था। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। तुम इसकी रिसर्च पर काम कर सकती हो, लेकिन मैं इस पर शक करना नहीं छोड़ सकता, तो मेरी नजरें इसी पर रहेंगी, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा ठीक है ना, उसके चक्कर में हम क्यों अपना डिनर खराब कर रहे हैं? जल्दी खत्म करते हैं, फिर मुझे डिजर्ट में बाहर की आइसक्रीम भी खानी है, इशिका ने कहा और फिर से खाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु और इशिका एक दूसरे में फिर से बिजी हो गए थे, तो वहीं आयशा उनसे कुछ दूर खड़ी होकर उनकी बात सुन रही थी। पार्थ की बातों से उसे पता चल गया था कि इशिका ही डॉक्टर अनामिका है, तो वहीं पार्थ को इशिका की जरूरत थी तो वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आयशा ने गुस्से में दरवाजे के हैंडल को कसके पकड़ा और मन ही मन कहा, इस लड़की ने न जाने अपनी कितनी पहचान बना रखी है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो अपनी आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील करके न जाने कितने पैसे कमाता। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है। आयशा को कभी कभी इशिका के बर्ताव से हैरानी होती थी। वो डॉक्टर मर्चेंट थी, एक ऐसी रिसर्चर जिसकी वजह से न्यू एनर्जी में काफी सारी चीजों के बारे में पता चला था। हर कोई उसे हायर करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, पर इशिका ने कभी आगे बढ़कर अपनी पहचान नहीं बताई। तो वहीं डॉक्टर अनामिका, जो मेडिसिन्स पर रिसर्च करती थी, उसकी बनाई मेडिसिन्स कितनी कीमती होती थी ये सब जानते थे, फिर भी इशिका ने आगे आकर कभी अपनी पहचान नहीं बताई। भले ही लोगों को इशिका का ये डिसीजन बेवकूफी भरा लगे, लेकिन वो जानती थी कि इसके साथ एक खतरा भी छुपा हुआ था, और वही अनजान खतरा अब पार्थ के रूप में उसके पास आ भी चुका था। पार्थ राजवंश मेरा साथ कभी नहीं देगा, मुझे खुद ही अपना काम करना होगा, आयशा बोली। अचानक सोचते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने मन में कहा, क्या उसने थोड़ी देर पहले ये कहा कि इशिका प्रेग्नेंट है? रियली, इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे मिल भी नहीं सकता। इसके बच्चे के साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ था। अब आयशा के मंसूबे इशिका को चोट पहुंचाने की नहीं, बल्कि उसके बच्चे को चुराकर एक बुरी जिंदगी देने का था, जैसा कि मालविका ने इशिका के साथ किया था। आयशा वहां काफी देर तक खड़ी रही। उसे पर अभिमन्यु के गार्ड की एक नजर गई तो वो उसके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं देख रहा हूं कि आप कब से यहां खड़ी होकर मिस्टर और मिसेज राजवंश को घूर रही हैं। अगर आपको कोई काम नहीं है तो जाकर रेस्ट कर लीजिए, लेकिन यहां खड़ी होकर उनकी तरफ मत देखिए, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा।
आयशा की एक गलती की वजह से वो पकड़ी जा सकती थी। उसने जल्दी से सॉरी कहा और वहां से चली गई। आयशा ने प्लान तो बना दिया था, लेकिन वो अभिमन्यु राजवंश था, आदर्श सिंघानिया नहीं, जिसकी बेपरवाही की वजह से बच्चा चोरी हो जाए। आयशा ये तक नहीं जानती थी कि अगर उसे बदला गया था तो वो मालविका की नहीं बल्कि आदर्श की साजिश थी, वरना मालविका अकेले कभी कामयाब नहीं होती। आयशा को वहां से जाना पड़ा। वहीं इशिका और अभिमन्यु का डिनर हो गया तो वो दोनों साथ में उठकर बाहर आए। उनके पीछे पार्थ चल रहा था। थोड़ी दूर पर एक आइसक्रीम ट्रक खड़ा था। उसे देखकर इशिका एक्साइटेड हो गई तो अभिमन्यु ने मुंह बनाकर पूछा, क्या सच में तुम्हें उसी से आइसक्रीम खानी है? हम अंदर भी खा सकते थे, या फिर कहीं और चलते हैं, उसके पास तो ज्यादा वैरायटी भी नहीं होगी। हाँ, वैरायटी भी नहीं होगी और उसकी आइसक्रीम महंगी भी नहीं है। तुम्हें पता है, बचपन में मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता था, पर मालविका ने कभी मुझे पैसे ही नहीं दिए। मिसेस सिंघानिया, माँ, जरूरत के लिए कुछ पैसे देती तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर मैं महीने में 2 बार आइसक्रीम खा सकती थी। ट्रस्ट मी, उसकी आइसक्रीम तुम्हारी महंगी आइसक्रीम से भी बेस्ट होती है, इशिका बोली और अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां पर उसके पास लेकर चली गई। कभी कभी तुम्हें देखकर डाउट होता है कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट या डॉक्टर अनामिका हो क्या? तुम्हारा बिहेवियर काफी बार चाइल्डिश हो जाता है, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर कहा। हाँ, क्योंकि बचपना जरूरी भी होता है, अब एनी टाइम तुम्हारी तरह बॉस बनकर सब पर चिल्ला भी तो नहीं सकती ना, इशिका ने हंसकर कहा। इशिका ने उस छोटे से आइसक्रीम ट्रक से काफी सारी आइसक्रीम खरीद ली। इशिका ने गाड़ी में बैठने के बजाय वॉक करना प्रेफर किया और वो अभिमन्यु के साथ चलते हुए आइसक्रीम खा रही थी। हालांकि अभिमन्यु ने उसकी आइसक्रीम को खाने से साफ मना कर दिया था। तुम बहुत रूढ़ हो, अभी भी पहले की तरह। आई होप कि मेरा बच्चा अपने डैड की तरह ना हो, इशिका ने उसे घूरते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो अपनी मॉम की तरह होगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, अभिमन्यु ने जवाब में इशिका को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन फिर मुझे एक बात की चिंता सता रही है कि अगर हमारी बेटी हुई और वो तुम्हारी तरह ही शाई हुई तो बेचारे के हस्बैंड का क्या होगा? उसे तो मेरी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना होगा ना? अभिमन्यु के इस तरह परेशान करने पर इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसके गाल लाल होने लगे थे। अभिमन्यु ने अचानक इशिका को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं गार्ड्स की वार्निंग देने के बाद भी आयशा बाज नहीं आ रही थी। वो अभी भी अभिमन्यु और इशिका के पीछे थी, लेकिन एक दूरी बनाकर चल रही थी। अगर आयशा को अपने प्लान को कामयाब करना था तो उसे इशिका के आसपास रहना जरूरी था। जब अभिमन्यु इशिका को लेकर गाड़ी में बैठा तो आयशा कैब हायर करने के लिए बढ़ी ही थी कि किसी ने उसका मुंह दबाकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। सॉरी, थोड़ा गैप हो जाता है कई बार क्योंकि लिखने का मन नहीं करता है। एक लंबी कहानी आप लगातार लिखो तो यही होता है। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।